surgió Me.
ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गई कटौती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं अम्बरीश सक्सेना।
भारतीय रिजर्व बैंक ने 25 आधारभूत अंकों की कटौती की घोषणा की है। इससे पहले फरवरी में भी रिजर्व बैंक ने 25 आधारभूत अंकों में कटौती की घोषणा की थी, ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की थी। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रख्यात विशेषज्ञ शरद कोहली जी। शरद जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
नमस्कार अम्बरीश।
तो जैसा कि शरद जी हम देख रहे हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में कटौती की घोषणा की है, हालांकि बहुत लंबे समय से कोई कटौती नहीं हो रही थी, लेकिन अब लगातार दूसरी बार कटौती की गई है। तो इस कटौती को आप किस तरह से विश्लेषित करते हैं?
इसमें दो तीन चीजें हैं जो समझने वाली हैं। 25 बेसिस पॉइंट आज कट किया गया है, फरवरी में करा गया था, लगातार दूसरा, दोनों मिला लें तो 50 बेसिस पॉइंट है। और अगर हम आम आदमी की भाषा में समझे कि लोग समझेंगे कि हमारी जेब में क्या फायदा है, तो आप जो लोन्स लेते हैं, कंज्यूमर लोन है, हाउसिंग लोन है, व्हीकल लोन है, ये जो आप लोन्स लेते हैं वो आपको आने वाले समय में सस्ते होते दिख सकते हैं। तो ये तो सीधा सीधा अगर लोग पूछें कि हमारी जेब पर इसका क्या असर होगा, और अगर मैं इसको आंकड़ों के जरिए कन्वर्ट करके तो एक उदाहरण के रूप में, तो मान लीजिए आपने 1 करोड़ का लोन लिया हुआ है हाउसिंग लोन, क्योंकि मैं बड़े लोन की बात करता हूं, उसके अलावा उसके अनुसार जो श्रोता है उसको छोटे लोन में कन्वर्ट कर सकते हैं। 20 साल के लिए आपने लिया हुआ है और मान लीजिए आपने 8.25% पे लिया है, और आपने जिस बैंक या जिस संस्था से लिया है वो आपसे 8.25% ब्याज लेता है, वो उसको काट के 8% कर देता है। तो इससे आपकी जो ईएमआई है मंथली, और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से करीब 1600 रुपए कम हो जाती है। तो 1600 रुपए को हम 12 से गुणा करें तो करीब 18,000 और 20,000 के बीच में आपको इसका लाभ होता है। ये तो रहा इसका सीधा सीधा लाभ। और जो दूसरी उन्होंने बड़ी घोषणा करी, और मुझे लगता है जो मैक्रो इकोनॉमिक लेवल पे समझने वाली है, कि उन्होंने न्यूट्रल स्टैंस से एकोमोडेटिव स्टैंस पे कर दिया। तो जो लोग इसको नहीं समझते हैं, क्योंकि ये मॉनेटरी पॉलिसी की भाषा है और ये मैक्रो इकोनॉमिक लेवल की भाषा है, तो मैं उसको आसान शब्दों में बता देता हूँ। न्यूट्रल का मतलब होता है जब हम न्यूट्रल स्टैंस लेते हैं, उसका मतलब होता है कि यहां से आपकी ब्याज दर ऊपर भी जा सकती है, नीचे भी जा सकती है और स्थिर भी रह सकती है। जब हम न्यूट्रल से अकोमोडेटिव की तरफ मूव कर जाते हैं, जो कि आज हुआ, तो उसमें ब्याज दर या तो वहीं ठहरी रहेगी या वो और इससे नीचे जाएगी। तो इससे ये अच्छी खबर है कि आने वाले समय में, हमको पता है हर 2 महीने बाद ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग होती है, तो आने वाली अगली 1-2 मॉनेटरी पॉलिसीज में आपको ये और भी नीचे जाती दिखती है। पर इससे भी जरूरी बात ये कि जिन लोगों ने वो वक्तव्य सुना आरबीआई के गवर्नर साहब का, उन्होंने बार बार ये जिक्र किया कि ग्रोथ पर, स्टेबिलिटी पर एक अनसर्टेनिटी है, यानी कि अनिश्चितता है, और ये अनिश्चितता अंतर्राष्ट्रीय है। भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मूलभूत रूप से बहुत मजबूत है। भारत के, उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर का जिक्र किया कि एग्रीकल्चर सेक्टर बहुत अच्छा चल रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बहुत स्टेबल है, और बाकी भी सर्विसेज का उन्होंने जिक्र किया। हम देखें हमारे यहाँ टैक्स कलेक्शंस बहुत अच्छी हैं। उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स का जिक्र किया कि करीब करीब $750 बिलियन के आसपास हम पहुंच चुके हैं। उन्होंने मॉनसून का जिक्र किया कि आईएमडी के जो आंकड़े आए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत जरूरी होते हैं, कि हमारा एक नॉर्मल मॉनसून होने का, इनफैक्ट 103% अगर मैं प्रिसाइज बात करूं तो मॉनसून होने की उम्मीद है। तो सारे के सारे आंकड़े पॉजिटिव हैं, पर सिर्फ और सिर्फ एक हेडविंड है ये जो टैरिफ को लेके अनसर्टेनिटी है, जो अनिश्चितता अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल गई है, और इसके कारण अमेरिका में मंदी की आशंका जताई जा रही है या एक वैश्विक स्तर पर मंदी की आशंका जताई जा रही है। देखिए हम भी पूरी दुनिया का हिस्सा हैं और हम दुनिया को अपने से अलग थलग करके नहीं देख सकते। हालांकि मैं यहां यह जिक्र करना चाहूंगा एक अर्थशास्त्री होने के नाते कि भारतीय अर्थव्यवस्था करीब 60% कंजम्पशन पे चलती है, यानी कि आप और हम जाके जब गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं तो उस पर चलती है। तो उस लिहाज से हम काफी हद तक इम्यून्ड भी, यानी कि हम उससे अछूते भी रह सकते हैं कुछ हद तक, पर अगर वैश्विक आती है तो इस हेडविंड्स का आज गवर्नर साहब ने जिक्र किया
जी। लेकिन अगर हम घरेलू कारणों को देखें, पिछले 2.5 साल से कोई भी कटौती की घोषणा नहीं की गई थी, अब लगातार 2 बार कटौती की गई है, तो अगर उस समय से हम आज के समय की तुलना करें तो घरेलू स्तर पर कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके मद्देनजर रिजर्व बैंक ने इस तरह का फैसला लिया?
क्योंकि अक्टूबर तक इन्फ्लेशन की जो दर है, जिसको मुद्रास्फीति कहते हैं, वो 6.21% थी, और ये घटते घटते लगातार अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक आते आते 3.61% रह गई। और उन्होंने विशेषकर जिक्र किया कि जो फूड इन्फ्लेशन है, यानी कि खाद्य पदार्थों पर जो मुद्रास्फीति है, उसने ज्यादा परेशान किया हुआ था। खाने पीने की चीजें हैं, आपकी किचन की जो थाली है, सब्जी है, दालें हैं, फ्रूट्स हैं, ग्रोसरी के आइटम्स हैं, उन पर बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन परेशान कर रखा था। आरबीआई भी इसको लेकर परेशान था कि बाकी के आइटमों पे तो कंट्रोल में आ गई है, पर ये खाने पीने की चीजें, उस टाइम मानसून समाप्त हुए थे, मानसून की वजह से, वर्षा की वजह से कुछ सप्लाई चेन फूड की डिसरप्ट हो जाती है, तो उन कारणों से थी। अब जब इन्फ्लेशन आरबीआई का टारगेट जो 4% का है उसके लगभग आ गई, बल्कि उससे फरवरी के जो आंकड़े हैं वो उससे थोड़ा नीचे के ही हैं, तो इससे उनकी हिम्मत बनी कि अब समय आ गया है। देखिए, एज ए टूल इसको इस्तेमाल किया जाता है जब आपकी अर्थव्यवस्था ओवरहीटेड होती है, इन्फ्लेशन बहुत बढ़ जाता है, तो मॉनेटरी पॉलिसी टूल होता है कि हम रिपो रेट्स को बढ़ा देते हैं जिससे कि पैसा थोड़ा महंगा हो जाए और आपके लिए पैसे को खर्च करना थोड़ा सा कठिन हो जाए, जिससे इन्फ्लेशन पे थोड़ी लगाम लगे, और जैसे जैसे इन्फ्लेशन नीचे आती है तो लिक्विडिटी को और रिपो रेट को काट दिया जाता है जिससे कि आप अर्थव्यवस्था को रफ्तार दी जाए। तो दो कारण, अगर आपकी बात का मैं संक्षेप में जवाब दूं, एक तो मुद्रास्फीति का नीचे आना और अर्थव्यवस्था को अब और रफ्तार देना, क्योंकि उन्होंने अपने वक्तव्य में पिछले वाला जब उनका भाषण था तो उन्होंने 6.7% हमारी जीडीपी बताई थी, पर अब उन्होंने थोड़ा 20% का कंजर्वेटिव एस्टिमेट उसको नीचे लाके 6.5% पर किया है। वो इसलिए किया है कि उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ न कुछ ये जो हेडविंड्स हैं, ये जो अंतर्राष्ट्रीय हलचल मची हुई है ट्रेड सर्कल्स में, इसका कुछ प्रभाव हमारे ऊपर आ सकता है, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट कुछ हद तक कुछ समय के लिए प्रभावित हो सकते हैं।
तो जैसा कि आपने अंतर्राष्ट्रीय कारणों का जिक्र किया और जिस तरह से टैरिफ वॉर दुनिया में चल रही है, इसका भारत पर किस तरह का असर पड़ेगा, और खासतौर से जैसे अभी मुद्रा स्फीति की आपने बात की, मुद्रा स्फीति पर इसका कितना असर या कितना विपरीत असर पड़ेगा, और क्या उसकी लाइट में फिर आने वाले समय में रिजर्व बैंक को कुछ ब्याज दरों में इस तरह के निर्णय लेने पड़ेंगे जो आज के निर्णय से बिल्कुल अलग हों।
उन्होंने जो पूरा वक्तव्य अपना दिया मैं गिन रहा था, करीब 4-5 बार उन्होंने अनसर्टेनिटी शब्द का इस्तेमाल किया, यानी कि अनिश्चितता का इस्तेमाल किया, तो इसको एक तरह से वो राइडर की तरह डालते जा रहे थे कि मैं ये कह रहा हूं ये ऐसा होगा, परंतु जो अनसर्टेनिटी आती है तो उसमें हमें फेरबदल करना पड़ता है, एक तरह से क्वालिफिकेटरी रिमार्क वो हो जाता है। तो देखिए, भारत को जहां तक ये ट्रेड वॉर चल रही है, मैं समझता हूं इसको दो तरीके से हम देख सकते हैं। ट्रांजिशनरी कुछ समय के लिए, हालांकि आज भी भारत सरकार ने एक्सपोर्टर्स से मुलाकात की है, लगातार हमारा जो कॉमर्स वाणिज्य मंत्रालय है वो एक्सपोर्टर्स से संपर्क में बना हुआ है और आइटम बाय आइटम देखा जा रहा है कि हम कहां इसको एडजस्ट कर सकते हैं, अमेरिका के साथ बातचीत करके हम इसको और कहां एडजस्ट कर सकते हैं। अमेरिका ने जो ऑर्डर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आया था 2 अप्रैल का, उसमें 4C जो उसका सेक्शन था, उसमें ये बात कही गई थी कि अगर कोई भी देश हमारे अनुसार इसको एडजस्ट करता है तो हम उसको बदलने के लिए तैयार हैं। तो बातचीत के जरिए इसको सुलझाया जा रहा है। मुझे लगता है भारत के सामने एक अवसर भी है, क्योंकि चाइना पे 104% लग गया है, अब तो एडिशनल टैरिफ भी लगा दिया है, हमारे ऊपर अभी भी 26% है, तो हम इसको अपनी आर्थिक भाषा में बोलते हैं टैरिफ आर्बिट्राज, कि आपके पास ये आर्बिट्राज हो जाएगी क्योंकि उनके ऊपर 104% है, तो चाइना से जो सामान अमेरिका जाता है हमारे ऊपर 26% है, तो अब तो हमारा सामान वहां सस्ता हो सकता है। हमें करना यह है कि हमें अपनी मेक इन इंडिया को और सुदृढ़ करना है, हमें अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करना है, हमें अपनी कैपेसिटी को बढ़ाना है और हमें अपने आप को अंतरराष्ट्रीय मापदंडों पर और पुख्ता तरीके से लाना है। तो ये तो रहा पॉजिटिव, और नेगेटिव इंपैक्ट कुछ समय के लिए हो सकता है, क्योंकि जब तक ये सेटल डाउन नहीं होती, अंग्रेजी में बोलते हैं टिल द डस्ट सेटल डाउन, अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता लगा कि चाइना ने अब 84% टैरिफ कर दिया है, तो ये जो आपस में कशमकश चल रही है, टिट फॉर टैट चल रहा है, तो मुझे लगता है दो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अगर आर्थिक रूप से लड़ पड़े तो उसका कुछ न कुछ खामियाजा तो पूरी दुनिया को भुगतना ही पड़ता है।
तो जैसे आपने भारत के संदर्भ में कहा कि हमें कुछ इसमें अवसर भी दिखाई दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग की जैसे आपने बात की, तो वो कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर भारत को मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाने की जरूरत है और नई संभावनाओं की तलाश करनी चाहिए?
मुझे लगता है कि टेक्सटाइल और अपैरल्स है, क्योंकि वहां वियतनाम के ऊपर 46% लग गया है और वियतनाम से बांग्लादेश पे 37% लग गया, उनसे बहुत कपड़ा बन के जाता था, तो मुझे लग रहा है टेक्सटाइल अपैरल्स हो गई, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हो गए, क्योंकि गाड़ियां जो चाइना से बहुत भारी मात्रा में, अमेरिका की अपनी टेस्ला कार बहुत बड़ी फैक्ट्री है चाइना में जिसको लेकर इलॉन मस्क साहब को भी अब चिंता हो गई है, ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स हो गए, उन पे हमें ध्यान देना चाहिए, हमें सी फूड पर ध्यान देना चाहिए, हमें फार्मास्यूटिकल्स पे हालांकि अभी लगा नहीं है, पर अभी आप 1-2 दिन पहले जो ट्रंप साहब ने कमेंट किया कि फार्मास्यूटिकल पे देखिए हम क्या करते हैं, तो वो भी उनकी हिट लिस्ट में है, तो मुझे लगता है कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और बहुत लंबी लिस्ट है। अगर आप मेरे से सच पूछे तो मैं इसको दूसरे तरीके से बताऊं, तो जो जो सामान चाइना से जाता है वो सारे सामान की अगर हम लिस्ट अपने अंदर चिपका लें और उनकी हम धड़ाधड़ फैक्ट्रियां लगाएं और नए जो उद्यमी हैं, जो नए स्टार्टअप्स हैं, मैं आज सुर्खियों में इस कार्यक्रम के माध्यम से उनका आह्वान करना चाहूंगा कि वो स्टार्टअप्स आगे आएं और उन आइटम्स की लिस्ट लेके जो उनको पसंद आता हो उसको आप अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर आप उसकी यहां पर मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दीजिए और आप देखिए कुछ ही महीने में आप कहां से कहां पहुंच सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में सामान तो वो चाहिए। ट्रंप साहब ये चाह रहे हैं कि इनकी फैक्ट्रियां यहां लग जाएं, पर उसमें समय लगेगा, वो रातों रात नहीं हो सकता, और अमेरिका में ये भी सच्चाई है कि सामान तो चाहिए, या तो महंगा लेंगे वो हो नहीं सकता, या शॉर्टेज हो जाएगी, उस शॉर्टेज को हम पूरी कर सकते हैं। यहाँ पर भारत के सामने में बहुत बड़ा एक अवसर मुझे दिखाई पड़ता है।
तो ऐसे में रिजर्व बैंक की भूमिका को आप किस तरह से रेखांकित करते हैं?
देखिए, रिजर्व बैंक और जो हमारी फिस्कल पॉलिसी यानी कि वित्त मंत्रालय है, जो सरकार है, उसको मैं एक गाड़ी के दो पहिये मानता हूँ। अगर दो पहिये वाली पहले गाड़ी हुआ करती थी तो दो ही पहिये पे चलते, तो दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। आज जो ब्याज की दर कम हुई है, मुझे लगता है कि जो भी स्टार्टअप्स आते हैं, ऐसा तो है नहीं सबको इक्विटी फंडिंग मिल जाती है, लोगों को बैंकों के पास और वित्तीय संस्थानों के पास जाना पड़ता है, तो अगर उनको सस्ती दरों पर ये कर्ज मिलेगा और ये रेट कट होता है तो उनके लिए उस इंडस्ट्री को लगाना, उस फैक्ट्री को लगाना, उस बिजनेस को शुरू करना आसान हो जाएगा, लोन लेने की प्रक्रिया आसान हो जाएगी। दूसरा, आरबीआई डॉलर को बहुत क्लोजली मॉनिटर करता है। डॉलर को आप देखिए कि जब जब डॉलर ज्यादा स्ट्रांग होने लगता है तो आरबीआई रूपी स्वैप करता है और उसको पैसे को छोड़ता है बाजार में, डॉलर को छोड़ता है, जिससे कि प्राइस, तो मुझे लगता है डॉलर की स्टेबिलिटी जो आरबीआई मेंटेन करता है वो हमारे बिजनेसमैन के लिए बहुत काम की है।
और जैसे आपने जिक्र किया डॉलर का और रुपए के मूल्य का, अगर हम इसको जोड़ें और मौजूदा जो टैरिफ का पूरा संदर्भ चल रहा है उसके लाइट में इसको अगर हम समझने की कोशिश करें तो भारत के लिए अच्छा है, क्योंकि इधर लगातार रुपए में मजबूती हमें दिखाई देती है।
रुपए में मजबूती इंपोर्टर्स के लिए तो फायदा करती है, एक्सपोर्टर्स को उतना फायदा नहीं करती। एक्सपोर्टर्स के लिए तो मजबूत डॉलर उनको ज्यादा पैसे यहाँ ला के देता है, पर इंपोर्ट भी बहुत सारा सामान होता है। सारा सामान देखिए, कोई भी देश आज दुनिया में अपने यहाँ सारा सामान नहीं बना सकता। हम तो वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं, पूरी दुनिया आज एक परिवार की तरह है, कुछ तुम बनाओ कुछ हम बनाए और सब मिलकर अपना गुजारा करते हैं। तो मुझे लग रहा है इंपोर्टर्स के लिए फायदा है, पर स्टेबिलिटी जो है रुपए और डॉलर की वो बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वॉलिटिलिटी बनी रहती है तो आपको आयात और निर्यात दोनों में दिक्कत आती है, आपको नुकसान हो जाता है, जिसको हम फॉरेक्स लॉस और फॉरेक्स गेन्स कहते हैं। तो मुझे लगता है आरबीआई की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है रेट कट में, बैंकिंग लिक्विडिटी मेंटेन करने में बहुत भूमिका है, क्योंकि लिक्विडिटी आप देखे होंगे आरबीआई लगातार ओएमओ करता है। इस महीने भी 60,000 करोड़ का ओएमओ का टारगेट है, जिसको हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस कहते हैं। जब जब आरबीआई को लगता है कि सिस्टम में लिक्विडिटी कम है, पैसा इन सर्कुलेशन कम हो गया है, तो आरबीआई फौरन ओपन मार्केट ऑपरेशंस के जरिए उस पैसे को छोड़ता है, जब ज्यादा हो जाती है खींच लेता है। तो ये सब बिजनेस के लिए, जो लोग अर्थशास्त्र नहीं भी समझते, अगर मैं बिल्कुल देसी भाषा में आसान भाषा में बोलूं तो बिजनेस के लिए तो लिक्विडिटी चाहिए, पैसा नहीं मार्केट में होगा। आपने अक्सर बिजनेसमैन को कहते सुना होगा यार पैसा नहीं है मार्केट में, काम तो बहुत है, तो लिक्विडिटी भी उतनी जरूरी है। यहाँ भी आरबीआई की भूमिका बहुत ही,
और आज रिजर्व बैंक के गवर्नर ने इस बात को कहा भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि जो लिक्विडिटी है उसकी वो कमी नहीं होने देंगे और उसकी उपलब्धता बनाए रखेंगे। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अभी आने वाले समय में हमें रेट कट में और कटौती,
जी हाँ, अगर ये अंतर्राष्ट्रीय फैक्टर्स अगर ये बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ एक रिस्क नजर आता है कि अगर ये ट्रंप साहब के ये टैरिफ लग गए और वहां पर महंगा सामान होने लगा तो अमेरिका में रेट्स बढ़ जाएंगे, फेड को रेट कट नहीं कर पाएंगे, अमेरिकन फेड जिसका हम अक्सर जिक्र करते हैं। तो अगर अमेरिका में रेट्स बढ़ने लगे तो क्या होता है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल रोकने के लिए कई बार रिजर्व बैंक को भी उसको मैच करना पड़ता है। इसीलिए आरबीआई के गवर्नर साहब ने बार बार आज इसको कहा कि हम ये सब 6.5% हमारी जीडीपी, हमारी इन्फ्लेशन 4% से नीचे है, पर अनसर्टेनिटी वर्ड को उन्होंने सब जगह साथ में रखा है, क्योंकि वो हमारे और आपके कंट्रोल से बाहर है। हम अपनी पॉलिसीज को कंट्रोल कर सकते हैं अपनी, पर हम ग्लोबल ऑर्डर को हम डिक्टेट नहीं कर सकते।
रिजर्व बैंक ने जो अपनी रेट कट आज अनाउंस किया और इसको हम जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिस तरह की चीजें हो रही हैं उसके संदर्भ में रखें, तो भारत की जीडीपी को आप कहां देखते हैं?
देखिए, भारत इस समय बाकी की दुनिया से बहुत ही अच्छी परिस्थिति में है। 6.5% की जीडीपी की जो फोरकास्ट आज करी है, हालांकि उन्होंने 20 बेसिस पॉइंट काटे हैं उसमें से, मैं समझता हूं इस समय इमर्जिंग इकोनॉमीज में हम सबसे तेज बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है और किसी भी देश के लिए ये बहुत ही रोल मॉडल की तरह है, क्योंकि हमारी जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो बहुत स्ट्रांग है। आप हमारी टैक्स कलेक्शन देखिए, आज जीएसटी 2 लाख करोड़, हमारी डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन 16-20% बढ़ गई है। ऐसी परिस्थिति में जो विकसित अपने आप को देश कहते हैं वहां पर विकास की दर मात्र 1%, 0.5%, 1.5% देखने को मिल रही है। तो मुझे लग रहा है भारत की पोजीशन बहुत मजबूत है, और अगर ये वैश्विक मंदी के कुछ संकेत मिलते भी हैं, मुझे लगता है भारत उससे काफी हद तक अछूता रहने वाला है।
शरद जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने और मौद्रिक नीति में आज जो परिवर्तन हुआ और जो ब्याज दरों में कटौती हुई उसको इतनी सरल भाषा में आकाशवाणी के श्रोताओं को समझाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
अभी आप सुन रहे थे रिजर्व बैंक द्वारा रेपो दर में की गई कटौती पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली। कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे अम्बरीश सक्सेना। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप NewsOnAIR और YouTube चैनल NewsOnAIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnstalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289099। 4044।
सुर्खियों में